आज है 7 फरवरी दिन रविवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। उत्तर प्रदेश में आज होने वाले ब्लॉक चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ा। बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि ने टीवी पर विज्ञापन के मामले में कैडबरी को पीछे छोड़ा।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शीर्षासन कराने के लिए हमें संदेश को एक साथ समूल रूप से सभी लोगों को देना। 4 महीने पुराना हमारा विज्ञापन कैंपेन, और जैसा हमने कहा कि 150% की जो ग्रोथ है, ये तो हमारी लगातार 4 सालों से चल रही है।
मिलेंगे बिहार में वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले ऐसे पिता से जिनके बेटे की सफलता ने उनका पसीना सुखा दिया।
साधारण दुकान चलाते हुए उसके करीब करीब ख्वाहिश को पूरा करता रहा मैं, यथासंभव जहाँ तक हो पाया। मगर सुन के जितना पसीना बहाए थे हम, सारा सूख गया। अब इतनी शीतलता महसूस हो रही है।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं और आज ही वोटों की मतगणना भी हो जाएगी। ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए 1708 नामांकन भरे गए थे, जिसमें से आधे से अधिक महिलाएं हैं। प्रदेश में प्रमुख पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद सत्तारूढ़ पार्टी समाजवादी पार्टी ने खुद को सबसे आगे बताया है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुए एक आत्मघाती हमले में करीब 10 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक महिला और सरकारी अर्धसैन्य बल फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 सदस्य शामिल हैं। आत्मघाती हमलावर एक साइकिल पर सवार था। पाकिस्तान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस दावे की कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। क्वेटा बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है, जो कई अलगाववादी और इस्लामिक चरमपंथी दलों का गढ़ रहा है। टूनिशिया का कहना है कि लीबिया के साथ लगी उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उसने 200 किलोमीटर लंबे बैरियर बनाने का पहला चरण पूरा कर लिया है। ये बैरियर चरमपंथियों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। इसे बनाने का फैसला पिछले साल किया गया था, जब टूनिशिया के एक समुद्री तट पर 38 लोगों की हत्या कर दी गई थी। टूनिशिया सरकार ने आशंका जताई थी कि हत्याएं लीबिया में प्रशिक्षित चरमपंथियों ने अंजाम दी थी। टूनिशिया के रक्षा मंत्री फरहत होरचानी के अनुसार इसके दूसरे चरण में बैरियर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें जर्मनी और अमेरिका उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने बैरियर तैयार कर दिया है, लेकिन अभी उसमें कुछ उपकरण लगने बाकी हैं। इससे हमें चरमपंथियों को बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें 2 सहयोगी देश अमेरिका और जर्मनी हमारी मदद कर रहे हैं। टूनिशिया के रक्षा मंत्री फरहत होरचानी के शब्द। अफगानिस्तान और तालिबान चरमपंथियों के बीच वार्ता की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर वार्ता की। इस वार्ता में तालिबान मौजूद नहीं था। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच फरवरी के अंत तक वार्ता हो जाएगी। चारों ही देशों के प्रतिनिधियों ने सभी तालिबानी संगठनों से इस वार्ता में शामिल होने की अपील की। करीब एक दशक पहले इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी सेना पर कैदियों को यातना देने के आरोपों से जुड़ी 200 तस्वीरें अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की तरफ से सूचना की आज़ादी से संबंधित एक आवेदन के जवाब में तस्वीरें जारी की गईं। इन तस्वीरों में मुख्यतः कैदियों की बाजुओं और टांगों में लगी चोटें ही दिखाई दे रही हैं। इस मामले ने 2004 में तब तूल पकड़ा था, जब इराक की अबू गरीब जेल में अमरीकी सैनिकों के इराकी कैदियों को यौन रूप से प्रताड़ित करने और यातना देने की तस्वीरें सामने आई थीं। जापान की सरकार का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपने विवादित रॉकेट को पूर्व निर्धारित समय से पहले छोड़ने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार जापान की सरकार ने कहा कि उत्तर कोरिया 7 से 14 फरवरी के बीच उपग्रह ले जाने में सक्षम अपने रॉकेट को प्रक्षेपित कर सकता है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं। इन चुनाव में सीधे निर्वाचित होने वाले बीडीएस सदस्य मतदान करते हैं। हालांकि चुनाव से पहले ही 385 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में राजनीतिक पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। कभी बीडीएस सदस्यों के अपहरण की खबरें आईं, तो कभी नामांकन रोकने की, इस बीच गोलीबारी की भी खबरें सामने आई। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ में मौजूद हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, लगभग 40% ब्लॉक प्रमुख जो है पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, आखिर ये संभव कैसे हो पाया?
जी हाँ, राज्य में कुल 816 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने थे, लेकिन अब सिर्फ 441 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। और यानी इसको कहा जाए कि लगभग आधे निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को ही इनका नामांकन हुआ, शनिवार को नाम वापसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनकी निर्वाचन की घोषणा कर दी। इनमें से 313 ब्लॉक तो ऐसे थे जहां सिर्फ एक ही नामांकन हुआ। इसके अलावा शनिवार को 72 और ब्लॉकों के नाम वापसी के बाद निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। इस तरह अब सिर्फ 385 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए हैं और केवल 431 ब्लॉकों में चुनाव होने हैं। रही बात कैसे संभव हुआ, तो इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के लगभग हर कोने से ऐसी खबरें आती रही कि कभी बीडीसी सदस्यों को धमकी दी गई, बीडीसी सदस्य वो है जो कि ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में मतदाता होते हैं, कभी उनको पैसे देने के आरोप लगे। इसके अलावा समूहों में बीडीसी सदस्यों के अपहरण या फिर उनको बंधक बनाए जाने की भी शिकायतें मिली। इस संबंध में कई मामले भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो उम्मीदवारों ने दो ढंग से जीतने की कोशिश की, या तो उसके खिलाफ कोई खड़ा ही न हो, ये कोशिश हुई, दूसरी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर सुनिश्चित कर सकें, इसकी कोशिशें हुई। और इसको लेकर के ही पूरा चुनाव जो है काफी चर्चा में रहा है।
जी, काफी चर्चा में रहा चुनाव, और चुनाव में इस चुनाव को लेकर हिंसा भी की भी खबरें आई, और कई बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग भी इसमें शामिल हैं।
हिंसा की बिल्कुल कई शिकायतें आई हैं, और शायद ही कोई जिला हो जहां से शिकायत ना आई हो। हिंसा की कुछ घटनाएं, इनको लोगों ने कैमरों में भी कैद कर लिया, जिससे वो आम लोगों के बीच आ गई। नामांकन के दिन कई जगहों पे आमने सामने संघर्ष की तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं, वीडियो आए हुए हैं, कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक दलों की इसमें विशेष दिलचस्पी है ही, और कहा भी जाता है, राजनीतिक हलकों में चर्चा भी होती है कि ये चुनाव जो है इनको सत्ता का चुनाव कहा जाता है। जो भी राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी होती है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती है, दूसरे राजनीतिक दल यहाँ आरोप भी इस तरह के लगा रहे हैं। इसीलिए जो शिकायतें भी मिली हैं ज्यादातर वो समाजवादी पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ही खिलाफ आई हैं। कई मंत्रियों पर भी मतदाताओं को सीधे धमकाने के आरोप लगे हुए हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री का तो धमकाने संबंधी एक ऑडियो टेप भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है
जी।
और नामांकन के दिन कई जगहों पर समर्थकों ने कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि दूसरी पार्टी के सब जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन ना करने पाए, इसको लेकर के कई जगह काफी हिंसक संघर्ष हुआ है। कई बड़े राजनेताओं के रिश्तेदार इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, कई तो निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के परिवार के एक दो लोग हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष माधव प्रसाद पांडे हैं उनके परिवार के लोग हैं
जी।
एक चीज और यहाँ महत्वपूर्ण है कि केवल सत्ताधारी पार्टी के लोगों के खिलाफ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही हैं, उनके बेटे के खिलाफ भी इस तरह का मामला दर्ज किया गया है
जी,
जिन्होंने मतदाताओं को धमकाने की
कोशिश की थी जी। तो आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं, आप इस खबर पर नजर बनाइए और बना के रखिए। और ये थे लखनऊ से हमारे संवाददाता समीर आत्मज मिश्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदेव की उपभोक्ता सामान बनाने वाली ब्रांड पतंजलि ने टीवी पर विज्ञापन के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी कैडबरी को भी पीछे छोड़ दिया है। विज्ञापन पर नजर रखने वाली एजेंसी के मुताबिक कैडबरी से कहीं ज्यादा बार पतंजलि के विज्ञापन दिखाए गए हैं। अपुष्ट खबरों के अनुसार पतंजलि ने करीब 300 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए हैं। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारावाला से पूछा कि पतंजलि को विज्ञापनों की इतनी जरूरत कब पड़ गई?
वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लोएस्ट प्राइस को लेकर हमने पूरी तमाम उत्पादों की स्वदेशी अभियान के तहत एक श्रृंखला तैयार की, एक प्रोडक्ट प्रोफाइल तैयार किया। उसकी सूचना तो हम 125 करोड़ लोगों को देंगे कि ये आपके पास विकल्प मौजूद है जहाँ पर आप इन उत्पादों का इस्तेमाल कर स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं और दूसरा अपनी पॉकेट अपनी बजट में आर्थिक मित्रता ला सकते हैं। इन दो संदेशों को जब तक हम नहीं देंगे तो इनकी अभी तक पहले स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी की लोग बात करते थे, कोई विकल्प नहीं देते थे, हमने विकल्प दिया और उन विकल्पों के बारे में स्वस्थ रूप से लोगों को बताने संदेश देने के लिए टीवी के विज्ञापन कर रहे हैं। ये टीवी के विज्ञापन में आपने दो चीजें और देखी, यहाँ पर माताओं का नारियों का शोषण करके उनके शारीरिक अश्लीलता दिखाकर लोग विज्ञापन को प्रमोट कर एक स्वप्न संसार सजा देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने पूरी तरह भारतीय संस्कृति के अनुरूप और गुणों के अनुरूप, जो भारतीय वैदिक ज्ञान है, योग है, आयुर्वेद है, उनकी परंपराओं के अनुरूप जो गुण रूप है, उनके बारे में संदेश दे रहे हैं स्वस्थ रूप से।
जो संदेश प्रसारित हो रहे हैं तो वो कंपनियां भी तो संदेश ही देती है ना, वो भी तो अपने कंपनी के उत्पाद के बारे में बताती हैं लोगों को। मतलब ये हो सकता है रंग रोगन दूसरा हो और उनका रंग रोगन दूसरा हो, मैं प्रचार अभियान की बात कर रहा हूँ। बाबा रामदेव के जो प्रोग्राम होते हैं, जो उनके शिविर लगते हैं, वहाँ भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर हैं, तो उन तक संदेश तो आपके माध्यम से सीधे ही पहुँच रहा था। इसमें टेलीविजन के माध्यम की इतनी बड़े पैमाने पर जरूरत क्यों पड़ी?
स्वामी जी का अपना एक संकल्प है कि हमें विदेशी कंपनियों की लूट के चलते इन विदेशी कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शीर्षासन कराना है। शीर्षासन कराने के लिए हमें संदेश को एक साथ समूल रूप से सभी लोगों को देना है। 4 महीने पुराना हमारा विज्ञापन कैंपेन है, इससे पहले तो हमारा कोई टीवी पर विज्ञापन ही नहीं था। और जैसा हमने कहा कि 150% की जो ग्रोथ है, ये तो हमारी लगातार 4 सालों से चल रही है। हमने तो विज्ञापन पिछले 4 सालों से नहीं किया और लगातार 150% ग्रोथ हासिल की। तो हमारी जो पूरा अभियान है वो 3 बातों पर आधारित है। एक तो हम विदेशी कंपनियों द्वारा की जा रही अपने आम उपभोक्ताओं से लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, स्वस्थ उत्पाद देंगे। हमारे यहाँ पर जो भी सेवाएं होती है ना, हमारा मार्केटिंग का ओवरहेड है, इसलिए लोएस्ट प्राइस है। लोगों का मार्केटिंग ओवरहेड 20-30% रहता है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, विज्ञापन तो हमने खर्च किया ही नहीं। लोग कहते हैं इतना बजट है, उतना बजट है, ऐसा नहीं।
आपने सितारों की बात की, आपके विज्ञापन में भी तो हेमा मालिनी आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि 4 साल से जब चल रहा था और इतना अच्छा ग्रोथ चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया कि विज्ञापन की तरफ इतने बड़े पैमाने पर ध्यान गया आप लोगों का?
जहाँ तक हेमा मालिनी जी का संबंध है, उन्होंने तो मुफ्त में बिना कोई शुल्क लिए विज्ञापन किया है चैरिटी कॉज को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हमारा जो भी अभियान है, इसका जो एंड रिजल्ट है, मेन मिशन है चैरिटी। हमारा व्यापार नहीं, उपकार करने के लिए है। हमारा कमाई के लिए नहीं है पूरा कार्यक्रम, ये पूरा भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए। अभी हमने एक संदेश दिया है कि पूरे देश में 500 जिलों में आचार्य कुलम खोले जाएंगे, जहां पर वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था होगी, ताकि देश के लोग भारतीय शिक्षा पद्धति से सीखे, भारतीय संस्कारों के साथ सीखे, लेकिन पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो। इन सब चीजों के लिए पैसा तो कहीं से और नहीं आएगा।
तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो तरीके दूसरे लोग आजमा रहे थे लोगों तक पहुंचने के लिए, अब पतंजलि भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगा?
नहीं नहीं, यहाँ फर्क है। मैंने कहा ना, हमारी विज्ञापन का जो प्रारूप है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो संदेश का संवहन है, सब चीजों में मूल पे फर्क है। हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपए देकर ब्रांड एम्बेसडर नहीं खरीदे जाते, एक्टर नहीं खरीदे जाते, एंडोर्समेंट नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ पर स्वस्थ उत्पादों के गुणों के बारे में एकमात्र सूचनात्मक संदेश दिया जा रहा है।
पतंजलि के प्रवक्ता एस के तेजरावाला से बात कर रहे थे निखिल रंजन।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। समाचार पत्रों के साथ अमल स्टूडियो आ चुकी है। अमल,
आज के सभी अखबारों में क्रिकेट से जो जुड़ी खबर है, जिसमें आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, उसको सभी अखबारों ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। इसमें नवभारत टाइम्स लिखता है कि नीलामी में नेगी बने नगीना। इसमें पवन नेगी नाम के खिलाड़ी हैं जो दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें खरीदा है, 8.5 करोड़ रुपये में उनको खरीदा है। और बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाने वाले किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम है सुशीला। और इसके अलावा हिंदुस्तान हिंदी में एक खबर प्रकाशित हुई है इनके देश विदेश पन्ने पर, जिसका शीर्षक है आतंकियों से जुड़े 125,000 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इसमें आतंकवाद के खिलाफ ट्विटर पर बड़ा कदम, सोशल साइट ने कहा कि दुनिया भर की सरकारों का था दबाव। इसमें ट्विटर ने इनके खिलाफ ये कदम उठाया है। और जो कथित चरमपंथी संगठन है आईएस, उसके वो लगभग अपने अकाउंट से 2 लाख ट्वीट रोज़ाना किया करते थे, और लगभग इस तरह के 46,000 अकाउंट बनाए थे अलग अलग संगठनों ने। और हालांकि इसमें पाकिस्तान और अफगान आतंकियों का जो है वो जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इसके अलावा इसी अखबार में ही कैदियों से, अभी हम लोग ने मुख्य खबरों में भी सुना कि कैदियों से बदसलूकी की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, इसमें कुछ तस्वीरों के साथ हिंदुस्तान ने इसमें अपनी खबर प्रकाशित की है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने जो कल इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था, उसकी काफ़ी अच्छी तस्वीर दी है। इसमें कैसे नेवल फ्लीट, काफ़ी बड़ी सी तस्वीर है नेवल फ्लीट का, इसमें काफ़ी सारे शिप्स हैं, काफ़ी जहाज़ों के बारे में बताया गया है इसमें।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमल। और अब रुक करते हैं गाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं अमल। एक तरफ जहां दिल्ली में ऑटो एक्सपो कि नई नई गाड़ियां धूम मचा रही हैं, वहीं विंटेज कार रैली भी अपना जलवा दिखा रही हैं। ऑटो एक्सपो की गाड़ियां जहां रफ्तार के नए रिकॉर्ड बना रही हैं, तो दूसरी तरफ विंटेज कार के मालिक धीमी गति के रेस में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को लाल किले में जमा हुई ये पुरानी शानदार कारें आज बुद्धा सर्किट में जमा होंगी। सुनिए इंदु पांडे की ये रिपोर्ट।
दिल्ली में लाल किला के सामने पुरानी गाड़ियों का मेला लगा है। 6 फरवरी यानी कि शनिवार को ये गाड़ियां दर्शकों के लिए रखी गईं। दिल्ली के रहने वाले मदन मोहन, जो कि पुरानी गाड़ियों का शौक रखते हैं, और इस आयोजन में उनका भी सहयोग है।
पहली बार यूके, फ्रांस और जर्मनी से पहली बार भारत में किसी कार्यक्रम में गाड़ियां पहुंची हैं।
वैसे तो सारी गाड़ियां बहुत बेशकीमती हैं, लेकिन अगर मैं फिर भी पूछूं कि कौन सी गाड़ी है जो सबसे महंगी है।
इंग्लैंड में बनी हुई 1908 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट, वो दुनिया की सबसे बेशकीमती रोल्स रॉयस है, जिसके कि इंजन और पिस्टन्स तक पे जो उनके कंपनी के जो नंबर्स थे वो आज तक उस पे हैं। मिनिमम 5 मिलियन पाउंड्स की कार है।
विंटेज कार रैली का आयोजन 21 गन सैल्यूट और हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया।
वर्णाली, आपको कैसी लगी ये विंटेज कार रैली?
मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं पहली बार आई हूँ, सो आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ।
कोई खास गाड़ी है जो आपको बेहद पसंद है?
महाराजा पटियाला, उस गाड़ी को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी।
इस रैली में दिल्ली के पवन कुमार टिब्बरवाला भी अपनी एक खास गाड़ी लेकर के आए।
कार, दिस इज वेरी रेयर कार, प्रोबेबली ओनली 2 इन द कंट्री। This car was purchased from a royal family of North Bihar, who were the first owners, and I am the second owner, which is very rare in vintage cars.
पवन के टिब्बरवाला की गाड़ी के बारे में आयोजक मदन मोहन का कहना है।
हाँ, यहाँ पर एक ब्यूइक है जिसमें महात्मा गांधी भी बैठे हैं उस गाड़ी में।
मैं दिग्विजय सिंह हूँ।
तो आप भी विंटेज कार के शौकीन हैं?
जी जी।
कितनी गाड़ियाँ आपके पास?
हमारे पास 3 है अभी। I have a Rolls Royce, a Buick and a Plymouth.
और इस मेले में बैंगलोर से आए रूपाली प्रकाश का कहना है।
So me and my sister, we both grown up with the car, so it's like परिवार का हिस्सा, an extension of our family.
तो कौन कौन सी गाड़ी चलाई अभी तक आपने?
Whichever possible, Jaguar XK140, Wolseley, Jaguar E-Type, Sunbeam Talbot, Sunbeam Alpine, Jaguar Mark 5, Triumph, TR3, Camaro.
कितने साल की हैं आप?
26.
26 साल की उम्र में 26 से ज़्यादा गाड़ी चलाई है। तो कोई गाड़ी है जिसको चलाने की ख्वाहिश रखती हैं?
हमारे पास, as in all the cars of my father's are so precious to us.
और गाड़ियों के साथ यहाँ पे कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था।
क्या नाम है आपका?
देवलीना। गाड़ियाँ है यहाँ पे जो कि बहुत साल पहले बने थे, तो इनके पोर्ट्रेट बनाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा।
इस विंटेज कार रैली में अक्सर आने वाले लोगों में से एक हैं।
मेरा नाम मनुजेंद्र शाह है, और आज जो सबसे अहम बात ये है कि ये बाहर से, ओवरसीज से भी बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं। रतन टाटा जी हमारे यहाँ बीच में हैं, और गाड़ियों की रेस्टोरेशन की क्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि अब ये नहीं पता चलता कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे। और मैं एक जज भी हूँ यहाँ, और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है किसको नंबर 1 करना है, किसको रनर अप करना है।
राजपिपला शहर जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से आए इंद्र विक्रम सिंह कहते हैं।
मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मोटरिंग थे इंडिया में, अर्ली 20th सेंचुरी में, जो फर्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग सिडली जो इम्पोर्ट हुई थी 1905 में, वो लेके आए थे। एक गाड़ी होती थी क्लेमेंट बेयार्ड, आजकल कम लोगों ने उसका नाम सुना है, वो उनके पास थी। उन्होंने 12 रोल्स रॉयस खरीदी From 1913 से लेके till 1937.
वैसे तो दिल्ली में पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलाई जा सकती, इस बात पे टिहरी गढ़वाल के राजा मनोजेंद्र शाह कहते हैं।
हमने उनको कहा कि आप कम से कम सैटरडे संडे को हमें अलाउ कीजिए, क्योंकि ये कितनी गाड़ियाँ चलेंगी दिल्ली में एट एन एवरेज ऑन सैटरडे संडे, 10-15 गाड़ियाँ चलेंगी एट अ टाइम, उससे कोई पोल्यूशन तो होने वाला नहीं है। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं।
तो हमारी शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों के लिए जिनके पास ये विंटेज कारें हैं, जो कभी न कभी तो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर जरूर आएंगी। इंदु पांडे, BBC दिल्ली।
और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं अमल चौधरी से।
नमस्कार,
दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे फेज को लेकर आज बड़ी संख्या में दिल्ली सरकार लोगों की राय लेगी। इसके अनुसार पार्टी के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 4 बैठकें करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या वो दिल्ली में दोबारा ये फॉर्मूला लागू करने के पक्ष में हैं या नहीं। नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु पुदल आज भारत आ सकते हैं। इस दौरान पुदल भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज आज फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में बैठक करेंगे। वार्ता के दौरान तीनों नेता यूरोप में बढ़ती शरणार्थी समस्या और ब्रिटेन की यूरोपीय संघ सुधारों पर चर्चा करेंगे। प्रो कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स का मैच पुनेरी पल्टन से होगा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा।
तो आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र, बता रहे थे अमल चौधरी। और आज न्यूज़ मेकर्स में हम आपको मिलवा रहे हैं बिहार के खगड़िया में रहने वाले एक मामूली वेल्डर के बेटे और उनके पिता के बारे में बताएंगे। ये इनके बेटे ने माइक्रोसॉफ्ट में करीब 1,20,00,000 रुपए के सालाना पैकेज पर उन्हें नौकरी मिली है। और बेटे की सफलता पर पिता चंद्रकांत सिंह चौहान से हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने बात की।
नाम ही उसका वात्सल्य रखा गया था उस समय। अब वात्सल्य का अर्थ समझ रहे होंगे आप। वात्सल्य का मतलब होता है पिता का स्नेह, और समझ लीजिए कि उससे ऐसी उम्मीद थी, इसलिए एक साधारण दुकान चलाते हुए उसके करीब करीब ख्वाहिश को पूरा करता रहा मैं, यथासंभव जहाँ तक हो पाया। मतलब सुन के जितना पसीना बहाए थे हम, सारा सूख गया। अब इतनी शीतलता महसूस हो रही है जिसको शब्द में हम तो नहीं बयां कर सकते हैं। यही सब है, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी लाइन में वो आगे बढ़ता रहे। करीब करीब मेरे सारे बच्चे इसी ढंग के हैं।
कुछ बताएंगे कि वो बचपन से कैसे थे, पढ़ने में कैसे थे, कोई उनकी खासियत क्या थी?
जी, पढ़ाई के प्रति काफी जागरूक था। कुछ घटनाएं मुझे याद है कि बचपन में उसको हमारे साथी सहयोगी लोग जो कभी आते थे तो बोलते थे बेटा गुना करोगे, चूंकि वो लोग जानते थे उसको चिढ़ाने के लिए, तो 5-6 अंक का गुना वो चादर पर उंगली से लिख लिख के और ऐसे लकीर खींच देता था। कहता था अंकल इतना आंसर हुआ, मतलब चादर पर उंगली घुमा के लिख ना 3-4 अंकों का। तो मान लीजिए ये तो गजब का टैलेंट उस समय महसूस हम लोग कर रहे थे और बड़ी हंसते थे कि इसका कैसा ब्रेन है। देखो कि हम लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसको चारों अंक जो गुना किया है दिखाई पड़ रहा है। ऐसी विलक्षण क्षमता थी उसमें।
चौहान साहब, आप बता रहे हैं कि आर्थिक दिक्कतें आती थी पढ़ाई लिखाई में।
बहुत छोटा सा वर्कशॉप मैं चलाता हूँ जिसमें ग्रिल, गेट, शटर, स्टील अलमीरा, गोदरेज टाइप
जी,
ट्रैक्टर का ट्रॉली
जी
बनता है। तो उससे मान लीजिए कि उतनी स्थिति मजबूत नहीं हो पाती थी, कि उस पर हमको भरोसा था कि वहां जाके ये जो है कुछ न कुछ कर देगा, इसलिए दिक्कत सिक्कत सहते हुए उसको हम भेजे।
उधर वात्सल्य भी इस सफलता पर खुश हैं और नई जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी पंकज प्रदर्शनी ने वात्सल्य से सबसे पहले पूछा कि वो इस वक्त 7वें आसमान पर है, 8वें या फिर 9वें।
नहीं, जमीन पे ही हूँ।
अभी आपके पापा से भी बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे थे कि जितना पसीना मैंने बहाया है अब सूख जाएगा वो। एक बेटे के लिए ये कितनी बड़ी बात है।
मैंने देखा है पापा का डेडिकेशन और हार्ड वर्क मेरे लिए और पूरी फैमिली के लिए, तो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता था वहाँ से कि मेरे को करना है कुछ, और इसलिए हार्ड वर्क करता था मैं। और मेरे भी काफी सपने थे कि मैं कुछ अच्छा करूँ लाइफ में।
ये बताइए कि कैसे, कब आपने अप्लाई किया था और कब आपको सूचना मिली इसके बारे में, आपकी इतनी बड़े पैकेज पे आपको नौकरी मिल रही है।
प्लेसमेंट का ड्यूरेशन होता है 1 दिसंबर के आसपास से होता है आईआईटीज में, तो 1 दिसंबर को मेरा सारा कुछ सारा प्रोसेस हुआ था।
तो कब से आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे?
अक्टूबर से।
अक्टूबर, इस साल अक्टूबर से। तो कोर्स कब तक है आपका?
मई तक है, बाकी कॉन्वोकेशन वगैरह अगस्त तक चल सकता।
तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई और शुरू से बताइए।
मैं बिहार बोर्ड से पढ़ता था, 10th तक मैं गांव में ही पढ़ा, तो सरकारी स्कूल में था, वहाँ पे फीस वगैरह तो नहीं लगता है, बट पढ़ाई का माहौल काफी बेकार था वहाँ, बट स्टिल मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो मैं खुद से भी पढ़ाई करता था। गांव में कुछ भैया लोग होते थे तो उनसे भी हेल्प लेता था, और वहाँ तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था किसी भी टाइप का, बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जेई के लिए पढ़ाई करना है, आईआईटी के लिए सुना जब, तो फिर मैं वहाँ से फिर कोटा गया था। फिर कोटा में 3 साल रुकना पड़ा था मेरे को, और उसके बाद फिर मैं आईआईटी में आया।
ये बताइए कि क्या आपको शुरू में, जैसे आपके पिताजी बता रहे थे कि थोड़ी आर्थिक तंगी भी थी उस समय, तो क्या आपको लगता था कि इस कारण आपकी पढ़ाई पे असर पड़ सकता है?
हाँ, एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं कोटा जाने वाला था तो मैंने जब फीस वगैरह पता किए तो ओवरऑल एक साल के रहने का कॉस्ट 1.5 लाख के आसपास, ट्यूशन फीस एंड रहना वहना सब मिला के इतना तक का लगना था। तो पहले मेरे को समझ नहीं आया कि मैं पापा से ये बात कैसे करूं, मतलब मेरे को लगा कि पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतना किसी भी टाइप से। बट पापा से बात की तो पापा ने बोला कि टेंशन मत लो, ये सोचना मेरा काम है, कुछ भी होगा कैसे भी करके करेंगे अरेंज, चाहे जमीन बेचना पड़े चाहे कुछ भी हो।
पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है आपके?
लाइक यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कॉम्पिटिशन होता है, मतलब ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें इंटरेस्ट है। और गाने सुनने, बस ये सब, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने, बच्चों को पढ़ाने, इन सब में इंटरेस्ट है।
खेल में कोई दिलचस्पी है आपकी?
नहीं, इंडोर गेम्स ही खेलता हूँ, कैरम में इंटरेस्ट है।
क्रिकेट में बिल्कुल नहीं है? भारतीय की तरह जो भारत क्रिकेट के पीछे भागा रहता है, आपकी कोई रुचि नहीं है उसमें?
नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखा कभी।
अच्छा, देखा ही नहीं क्रिकेट आपने?
नहीं, एक आध बार देखा होगा दोस्तों के साथ।
अच्छा अच्छा,
नहीं खेला।
माइक्रोसॉफ्ट में 1,20,00,000 का पैकेज पाने वाले वात्सल्य और उनके पिता चंद्रकांत सिंह चौहान से बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी। कल आईपीएल के 9वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई, कौन बिका महंगा और कौन बिका सस्ता और किस टीम से जुड़ा, एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें सीजन के लिए कल देसी विदेशी खिलाड़ियों की बोली लगी। इस बोली में एक बात साफ हो गई कि जो भी खिलाड़ी अपने देश की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं, चाहे वो अनुभवी खिलाड़ी हों या फिर नए, उन्हें अच्छे दामों में खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए पवन नेगी अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेले हैं, लेकिन वो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी 2020 सीरीज और उसके बाद एशिया कप तथा विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, इसलिए उन्हें दिल्ली ने बोलियों की जबरदस्त टक्कर में 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा। यहां तक कि इन दिनों बांग्लादेश में वर्ल्ड कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी 1,90,00,000 रुपए में बिके, उनका बेस प्राइस केवल 10,00,000 रुपए था, उन्हें दिल्ली ने खरीदा। पवन नेगी एक तरह से सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे। वैसे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वाटसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा, उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। शेन वाटसन ने भारत के खिलाफ आखिरी 2020 मुकाबले में शतक जमा कर अपना दमखम दिखाया था, शायद इसका इनाम उन्हें मिला। शेन वाटसन सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बने। युवराज सिंह को 7 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया। आशीष नेहरा जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज भी 5.5 करोड़ रुपए में हैदराबाद के हो गए। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा 3.80 करोड़ रुपए में पुणे, ड्वेन स्मिथ 2.30 करोड़ रुपए में गुजरात, डेल स्टेन भी 2.30 करोड़ रुपए में गुजरात के ही हो गए। बेहद अनुभवी ऑलराउंडर इरफान पठान को 1 करोड़ रुपए में पुणे ने खरीदा। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा भी अच्छे खासे पैसों में बिके, उन्हें 6.5 करोड़ रुपए में किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा। वैसे आईपीएल में सबसे पहले 9 मार्की खिलाड़ियों की बोली लगी। करोड़ों रुपए में बिकने वालों में स्टुअर्ट बिन्नी, धवल कुलकर्णी, टिम साउदी और केविन पीटरसन के साथ साथ दिनेश कार्तिक भी रहे। पीटरसन को 3.5 करोड़ रुपए में पुणे, स्टुअर्ट बिन्नी को 2 करोड़ में बेंगलोर, धवल कुलकर्णी को 2 करोड़ में गुजरात, टिम साउदी को 2.5 करोड़ में मुंबई और दिनेश कार्तिक को 2.30 करोड़ रुपए में गुजरात ने खरीदा। इस नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सबसे अधिक 37.15 करोड़ रुपए दिल्ली के पास थे। कुल मिलाकर 391 खिलाड़ियों की बोली लगी। कुछ खिलाड़ी लाखों में बिके, जिनमें आरपी सिंह को 30,00,000 में पुणे और मनन शर्मा को 10,00,000 में कोलकाता ने खरीदा, जबकि मार्टिन गप्टिल, चेतेश्वर पुजारा, हाशिम आमला, जॉर्ज बेली, डेविड हसी और प्रज्ञान ओझा बिना बिके रह गए।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं और आज ही वोटों की मतगणना भी हो जाएगी। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुए एक आत्मघाती हमले में करीब 10 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक महिला और सरकारी अर्धसैन्य बल फ्रंटियर कॉप्स के 3 सदस्य शामिल हैं। टूनिशिया का कहना है कि लीबिया के साथ लगी उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उसने 200 किलोमीटर लंबे बैरियर बनाने का पहला चरण पूरा कर लिया है। ये बैरियर चरमपंथियों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान और तालिबान चरमपंथियों के बीच वार्ता की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और चीन के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर वार्ता की। करीब एक दशक पहले इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी सेना पर कैदियों को यातना देने के आरोपों से जुड़ी 200 तस्वीरें अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।